नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार मनोज, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू अ डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर वेन वी गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 23rd of April 2025। सो मनोज, लेट्स बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस।
जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल के आतंकवादी हमले में कई पर्यटकों की हत्या की घटना को देखते हुए कश्मीर घाटी में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। ये घटना दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्रीनगर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हुई। इस घटना में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। पहलगाम में जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां 5 किलोमीटर के दायरे में ये अभियान चलाया जा रहा है। हमलावरों का पता लगाने के लिए विशेष बलों, खोजी कुत्तों और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग इस अभियान में किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में राजमार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रमुख ठिकानों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगहों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं तथा त्वरित प्रतिक्रिया दलों को तैनात किया गया है। श्रीनगर में आज सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को स्थानीय कमांडरों की ओर से घाटी में सुरक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। उधर श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे अन्य पर्यटन स्थलों पर आज जांच पड़ताल और तलाशी बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त छोटे, मध्यम और बड़े होटलों की सुरक्षा में भी वृद्धि की गई है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पर्यटन के इस मौसम के चरम पर होने के दौरान घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की इस घटना को लेकर गंभीर चिंता की स्थिति पैदा हो गई है। सुरक्षा बलों के सूत्रों के अनुसार लोगों के बचाव और उनकी पहचान के प्रयास जारी हैं तथा घटना में मारे गए लोगों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए पीड़ितों की सूची बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर और अनंतनाग में आपातकालीन सहायता डेस्क बनाया है जो 24 घंटे काम करेगा। सरकार ने नियंत्रण कक्ष के नंबर जारी किए हैं जो इस प्रकार है, 01942457543, 01942483651। इसके अलावा श्रीनगर के अपर उपायुक्त का हेल्पलाइन नंबर 70060508623 भी जारी किया गया है। अनंतनाग में बनाए गए नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर है 01932223337, 7780885759979792527 और 60063652045।
Prime Minister Narendra Modi cut short his state visit to Saudi Arabia following the terror attack in Pahalgam. Our West Asia correspondent reports, despite the shortened trip, Prime Minister's visit to the Kingdom of Saudi Arabia had several key outcomes. Indian Ambassador to Saudi Arabia, Suhail Ejaz Khan, said the two leaders also welcomed the progress made by the joint high-level task force on investments.
The two leaders also agreed to expand the scope of the Strategic Partnership Council, and it has been agreed that from the current two committees, we will have 4 committees in the Strategic Partnership Council, and the 2 new committees which have been agreed upon are on the defense cooperation and another is on the tourism and cultural cooperation. Both the leaders also welcomed the discussions under the joint high-level task force on investment.
Mr. Khan also said that His Royal Highness, the Crown Prince, condemned the terror attack and offered any help to India in this regard.
His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism, and we continue to work together in this issue.
गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। गृहमंत्री आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ घटनास्थल पर जाएंगे। वे आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर सकते हैं। आशा है कि वे उपचार करा रहे घायलों को देखने अस्पताल भी जाएंगे। गृहमंत्री देर रात श्रीनगर पहुंचे और वहां से सीधे राजभवन चले गए। इससे पहले गृहमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित अधिकारियों से इस घटना पर चर्चा की। उन्होंने दोहराया कि इस कायराना आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar and Prime Minister Narendra Modi have condemned the terrorist attack on tourists in Pahalgam. Terming it as shocking and painful, the President said it is a dastardly and inhuman act which must be condemned unequivocally. The President said attacking innocent citizens is utterly appalling and unpardonable. She expressed condolences to the families who have lost their dear ones and prayed for the quick recovery of the injured. In a social media post, Mr. Dhankar said that such acts of violence are reprehensible and deserve our strongest condemnation. Prime Minister Modi said those behind the heinous act will not be spared and will be brought to justice. In a social media post, the Prime Minister said their evil agenda will never succeed. He also expressed his condolences to those who have lost their loved ones and prayed for the injured to recover at the earliest. Mr. Modi added that all possible assistance is being provided to those affected. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah and leaders across party lines have strongly condemned the terror attack.
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में घाटी के कारोबारियों और पर्यटन व्यापार से जुड़े निकायों ने आज कश्मीर बंद की घोषणा की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर, जम्मू और कश्मीर होटेलियर्स क्लब, ऑल ट्रैवल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टरों, रेस्तरा मालिकों और नागरिक समाज समूहों के संयुक्त बयान में बंद की सूचना दी गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कई धार्मिक समूहों ने भी बंद का समर्थन किया है। जम्मू क्षेत्र में भी कारोबारी संगठनों और समाज के सभी वर्गों ने बंद का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों में लोगों ने इस हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। सेना के उत्तरी क्षेत्र में कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर एनवी सुचेंद्र कुमार आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। उन्हें स्थानीय सेना कमांडर कश्मीर घाटी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की जानकारी देंगे।
Leaders across the globe have condemned yesterday's terrorist attack in Jammu and Kashmir. US President Donald Trump, called off Prime Minister Narendra Modi, expressed deep condolences for the loss of innocent lives and assured full US support to help bring the attackers to justice. Ministry of External Affairs emphasized that both nations stand united against terrorism. Earlier, White House Press Secretary Caroline Leavitt said Trump had been briefed on the attack. She described the attack as brutal and reaffirmed US commitment to global peace and security. US Vice President J.D. Vance, currently in India with his family, also expressed sorrow over the attack, calling it heartbreaking. The US State Department labeled the attack as unjustifiable, reaffirming solidarity with India and the victims' families. President Trump also shared his condolences on Truth Social and extended his full support and deepest sympathies. He wrote, "The news from Kashmir is deeply disturbing and prayed for the souls of those who lost lives and for the recovery of the injured." Russian President Vladimir Putin extended his condolences to President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi on the killing of several tourists in the Pahalgam terrorist attack. He said the brutal crime has no justification whatsoever. He hoped that the organizers and perpetrators of the attack will face a deserved punishment. The UAE and Iran have also strongly condemned the terrorist attack. In a social media post, the Embassy of Iran in India has extended its heartfelt condolences to the government and people of India, especially to the families of the victims, and wished a speedy recovery and good health to the injured.
और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है, जबकि लखनऊ पांचवें स्थान पर है। प्रतियोगिता में हैदराबाद में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का।
Yes, we are starting with news from Chennai. members of parliament representing constituencies under Chennai division submitted a detailed set of demands focusing on passenger amenities across key stations. Concerns were raised on the condition and non-functionality of lifts and escalators at major stations such as Chennai Central and Egmore. It was noted that elderly and differently abled passengers face difficulties due to the long platform stretches and overhead crossings. Moving on to Bengaluru now, Karnataka Energy Minister K.J. George has said that they are planning to approach the central government to implement Kusum A scheme in the state. Kusum A, which expands to Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uthan Mahabhiyan, promotes local generation and consumption of solar power, particularly among farmers and rural communities. The Kusum B scheme incentives solar-powered agricultural pump sets, and Kusum C promotes solarization of agricultural feeders. These are being implemented in the state, and the minister said they are looking forward to introducing Kusum A scheme as well. The farmers, farmer groups, cooperative societies, panchayats, former producer organizations, and water user association can utilize Kusum A scheme to set up solar power plants with capacities ranging from 500 kilowatts to a maximum of 2 megawatts. They can use solar power and sell the surplus to the government. The energy minister said discussions will be held with the union government so that the scheme can address power shortage and provide farmers with additional sources of income. Getting to Hyderabad now. Temperatures across Telangana state have consistently started to peak during the last 48 hours, triggering severe heatwave-like conditions. The Indian Meteorological Department, IMD Hyderabad, issued a heatwave alert yesterday to multiple districts including Adilabad, Komaram, Bheem, Asifabad, Mancherial, Nirmal, Nizamabad and Jagtial till the 26th of this month, where temperatures could increase beyond 44 degrees Celsius. The IMD Hyderabad has also issued an orange alert for temperatures to be hovering around 44 degrees Celsius across the state, including Hyderabad. The IMD officials forecast a gradual rise by 2 to 3 temperatures across the state. Meanwhile, maximum temperatures continue to hover between 41 and 44 degrees Celsius at multiple locations in the state. And Manoj, other metro city news please.
जी, पहले दिल्ली की खबर. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय नेक्टर ने बेहतर निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए कल गुड़गांव में एक अभिनव एरोस्टेटिक ड्रोन का अनावरण किया. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा कि ये भारत में अपनी तरह का पहला ड्रोन है जिसे वन निगरानी, वन्य जीव निगरानी, सीमा और आपदा निगरानी अनुप्रयोग के लिए तैनात करने के लिए उच्च सहनशीलता और एरोस्टेटिक रूप से स्थिर क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया है. एरोबोटिक्स प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित तकनीक का लाइव प्रदर्शन कल गुड़गांव में आयोजित किया गया. दिल्ली की एक और खबर. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सफलता उम्मीदवारों की लगन, दृढ़ता और कड़ी मेहनत का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों ने सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है. इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने इस बार सफलता प्राप्त नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों को भी हिम्मत नहीं हारने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग दृढ़ निश्चयी हैं उनके लिए अवसर असीमित होते हैं. अब महाराष्ट्र की खबर. महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आवश्यक और तत्काल उपाय के रूप में जन भागीदारी का आह्वान किया है. उन्होंने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मंगलवार को पवई लेक सफाई अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में ये बात कही. पवई लेक सफाई कार्यक्रम राज्य के 9 दिन व्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान को दर्शाता है. सुश्री मुंडे ने कहा कि जिस तरह नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, उसी तरह इस अभियान के दौरान पृथ्वी का जीर्णोद्धार और संरक्षित करने की ईमानदार कोशिश करने का ये समय है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाओ, ग्रह को सुंदर बनाओ अभियान को गांवों से लेकर शहरों तक चलाया जाएगा। इस अभियान में नागरिकों को प्रकृति को संरक्षित करने की आवश्यकता की दिशा में जागरूक बनाया जाएगा। वहीं सरकारी और गैर सरकारी संगठन कमी लाएं, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें की अवधारणा पर आधारित स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर। कोलकाता के अलीपुर मौसम विभाग ने सोमवार को दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों में आगामी 3 दिनों के लिए लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उमस भरी गर्मी में वृद्धि होने की संभावना है। और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली के मौसम का हाल। दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
Yes, Manoj, starting with weather from Chennai, is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius, maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees Celsius, maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 23 अप्रैल है।
Yes, 1611, Shakespeare's play The Tempest was first performed on April 23, 1611. 1635, the first public school in the United States, Boston Latin School, was founded in Boston. Irish mathematician and astronomer William Rowan Hamilton presented his theory of systems of rays. This happened in 1827. And 1898, Spain declares war on the United States after rejecting America's ultimatum to withdraw from Cuba. In 1908, the North Atlantic Organization Treaty was signed between Germany, Denmark, Britain, Sweden, Holland and France. 1970, this day, electrical anesthesia was first used in obstetrics. The inventor, Professor Aim Limoge, applied the technique at the Rothschild Hospital in Paris. And in 1984, this day, U.S. Secretary of Health and Human Services, Margaret Heckler, announced that researchers had found what was believed to be the virus that caused AIDS. The infectious agent was later named HIV, which was hailed as a monumental breakthrough in medical research.
1990 में आज ही के दिन नामीबिया संयुक्त राष्ट्र संघ का 160वां सदस्य बना। 1999 में आज ही के दिन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर वाशिंगटन में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ।
And 2005 this day, the first video, which was of YouTube co-founder Javed Karim's visit to the San Diego Zoo, was uploaded on the YouTube website. Approximately 1 year later, the site had some 100 million videos.
2008 में आज ही के दिन क्षेत्रीय अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र लखनऊ को केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मान्यता दी। आज ही के दिन 2008 में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर इफको और मिस्र की सेंट्रल एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव यूनियन ने सहकारिता के क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया। और 2008 में आज ही के दिन अमरीकी कांग्रेस ने म्यांमा की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को शीर्ष नागरिक सम्मान अमरीकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र स्पैनिश भाषा दिवस भी हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि स्पैनिश भाषा के वैश्विक महत्व और सांस्कृतिक योगदान को सम्मान किया जा सके। 23 अप्रैल का चयन अंग्रेजी भाषा दिवस के साथ भी जुड़ा है जो दो भाषाओं और विश्व साहित्य और संस्कृति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बीच एक अनूठा संबंध बनाता है। ये दुनिया भर में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। ये स्पैनिश साहित्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति मिगुएल डे सर्वेंट्स सावेंद्रा की स्मृति के दिन से भी मेल खाता है, जिनका निधन 22 अप्रैल 1616 को हुआ था। 23 अप्रैल की तारीख प्रतीकात्मक है। आज ही के दिन विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था। इस तरह ये तिथि दुनिया के दो साहित्यिक दिग्गजों को जोड़ता है।
Yes, Manoj, you said it. Every year on 23rd April, UNESCO also celebrates World Book and Copyright Day to recognize the power of books as a bridge between generations and across culture. And of course, the first ever World Book Day was celebrated on this day in 1995. The date as decided by UNESCO, as it was also the death and birth anniversary of the great poet William Shakespeare. This legendary English poet and playwright was born and died on the same day, that's 23rd April. He lived only for 52 years and left us after adding more than 1,700 words to the English language. To this day, the Holy Trinity Church remains a place of interest for Shakespeare fans. It is where he was both baptized and buried, marking the beginning and end of the poet's life. And now moving on, Manoj.
He was,
yes, of course.
उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है.
Yes, of course. He was called a cinematic poet by the New York Times. Not to have seen the cinemas of Ray means existing in a world without seeing the sun or the moon. These glowing tributes to the legend was paid by another legend of cinema, Akira Kurosawa. The day marks the death anniversary of Satyajit Ray, who left us this day in the year 1992.
Satyajit Ray 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे, जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत राय प्रमुख रूप से फिल्मों के निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की है। सत्यजीत राय फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही करते थे। इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा लेखन, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल है। फिल्मकार के अलावा वे कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत राय कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। सत्यजीत राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल है। इनकी पहली फिल्म पौथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न के अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया गया है।
The Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray.
Well, it's an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. So I express my gratitude to the American cinema, to the Motion Picture Association, who given me this award and who made me so proud. Thank you very, very much.
And friends, 1850, death anniversary of English poet William Wordsworth, who rose to fame for his direct approach to poetry. Casting aside outdated literary tropes, he wrote poems that reflected everyday speech, becoming one of the first modern poets to connect to readers in their own language. A pioneering romantic poet, William Wordsworth addressed the natural world and human emotion and revolutionized poetry. A sample from his poem, few lines from his, I Wandered Lonely as a Cloud. I wandered lonely as a cloud, that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Wasn't it beautiful, friends? Here's another poem Wordsworth called My Heart Leaps Up. It talks about the simple beauty of a rainbow. But then, if you analyze or read between the lines, it means people should maintain their sense of childlike wonder well into their adulthood. Let me read a few lines. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. So is it now I am a woman. So be it when I shall grow old, or let me die. The child is father of the man, and I wish my days to be bound each to each by natural piety.
आज पुण्यतिथि है उषा गांगुली की. वे प्रसिद्ध भारतीय समाज सेविका तथा रंगमंच की अभिनेत्री और निर्देशक थी. कोलकाता में जहां बांग्ला थिएटर का बोलबाला था, वहां उन्होंने 1976 में हिंदी थिएटर ग्रुप रंगकर्मी की स्थापना की. उनको वहां वैकल्पिक हिंदी रंगमंच के एक नए रूप को लाने का श्रेय दिया जाता है. उषा गांगुली का नाटक काशीनामा बहुत चर्चित रहा था. उनके द्वारा निर्देशित नाटकों में महाभोज, लोक कथा, होली कोर्ट मार्शल, रुदाली, मुक्ति, शोभा यात्रा आदि शामिल है. उन्हें वर्ष 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
50 नाटक आपको जो बता सकती हूँ जो किसी उपन्यास पर आधारित होकर नाट्य रूपांतरण किए गए. जैसे हमने महाश्वेता देवी का रुदाली किया, ढाई पन्ने की छोटी सी कहानी, उस पर एक पूरा नाटक. उस पर जो लेखक होता है उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी इमेज, उसका अपना अनुभव भी काम करता है, और सारा का सारा रूप जो है वो एक नई नाटकीयता को रूप देता है. सीधे सपाट कहानी पढ़ना या कहानी के मंच के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, मैं वैसे करती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद बता रही हूँ. मैंने मंटो को लेकर 3 प्रोडक्शंस किए, एक शरद पाल मंटो, दूसरा बदनाम मंटो और मंटो और मंटो, और तीनों ही नाटक के शक्ल पर लिखे नाटकीयता से भरपूर नाटक थे. कहानियां थी मंटो की.
1891 tributes to child prodigy, musical genius, Russian composer Sergei Prokofiev, who would be 134 years of age had he been around. As a child, Prokofiev's musical ambitions were fueled by hearing his mother playing Chopin and Beethoven on the piano in the evenings. Young Sergei composed his first piano piece at 5 and his first opera at age 9. And he wrote in a wide range of musical genres, including symphonies, concerti, film music, operas, ballets, and program pieces. As though being a musical genius wasn't enough, Sergei was also a chess master. Playing as a child, chess remained a lifelong passion, so much so that in 1914 he effortlessly defeated the future world's chess champion. A baby superstar was born this day, friends, in 1928. Shirley Temple, American actress, singer, dancer, best known for her parts as a child actress, tap dancer. Shirley Temple was easily the most popular famous child star of all time. She got a start in the movies at age 3 and soon progressed to superstardom. She could do it all, act, sing, dance, and all at age 5. Fans loved her as she was bright, bouncy, cheerful in her films, and they ultimately bought millions of dollars worth of products that had her likeness on them. Dolls, phonograph records, mugs, hats, dresses, whatever it was. If it had a picture on it, they bought it. Shirley, of course, was a box office champion for the consecutive years 1935 till 1938, beating some great Hollywood greats. And although she starred in some very good movies like Since You Went Away, 1944, and The Bachelor and The Bobby Soxer, 1947, her career was nearing its end. Later, she served as an ambassador to Ghana and Czechoslovakia.
आज पुण्यतिथि है शमशाद बेगम की. वे भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों की शुरुआती पार्श्व गायिकाओं में से एक थीं. हिंदी सिनेमा के प्रारंभिक दौर में उनकी खनकती और सुरीली आवाज ने एक बहुत बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों की भीड़ तैयार कर दी थी. हिंदी फिल्मों के कई सुपरहिट उन्होंने गाए. इन गीतों की लोकप्रियता ने शमशाद बेगम को प्रसिद्धि की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था. वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शमशाद बेगम को कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था. और आज जयंती है सिस्टला जानकी की. वे एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार हैं. और अब अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।